ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
कि भगवान के किसी किसी अवतार का पता करोड़ों वर्ष पहले हो जाता है और डेट का पता होता है, व्यक्ति का पता होता है कि इसको भगवान पिता बना रहे हैं, इसको मां बना रहे हैं, इस स्थान पर इस वर्ष से इस दिन भगवान का अवतार हो, पहले से सब निश्चित हो जाते हैं। कुछ अवतार एक्सीडेंटल होते हैं, जैसे नृसिंह अवतार या बारह अवतार। भगवान नृसिंह देव के अवतार की कोई पूर्व सूचना नहीं, हम अकस्मात प्रकट हो गए, परंतु फिर भी भगवान ने कहा था कि मैं हिरण्यकश्यपु का वध करूंगा, परंतु कब करेंगे, कब कहां प्रकट होंगे, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। और नृसिंह अवतार में भगवान ने कोई माता पिता स्वीकार नहीं किया, खंभे को ही अपने पिता के रूप में स्वीकार करके प्रकट हुए, कोई मां नहीं हुई नृसिंह भगवान की, पिता भी नहीं, लेकिन भगवान श्री राम पिता स्वीकार किए, मां स्वीकार किए। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो भगवान को अपने पुत्र रूप में पाने के लिए व्याकुल रहते हैं, चाहते हैं कि भगवान को हम गोद में खिलावे, दूध पिलावे, और नाना प्रकार से जैसे अन्य बच्चे की सेवा करते हैं वैसे भगवान हमारे पुत्र हो जाते और हम सेवा करते। यह बहुत ऊंचा भाव है। इस संसार में प्रायः इच्छा होती है गृहस्थी स्वीकार करने पर, हमको कोई पुत्र हो पुत्री हो, मां की गोद सुनी रहती है पुत्र के बिना, वे गृहस्थी की बहुत ही शोभा है वास्तव। तो जब सामान्य जीव को भी हम पुत्र मानकर और उसके लालन पालन में इतना आनंद का अनुभव करते हैं, जिनके पुत्र स्वयं भगवान होंगे उनको कितना सुख मिलता होगा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवह सो दशरथ अजीर बिहारी, दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले जो मंगल के भवन हैं और अमंगल का हरण करने वाले हैं वे श्री राम हम पर द्रवित। वास्तव में भगवान के वैसे बहुत से अवतार हैं, लेकिन जो ये दो अवतार हुए, एक तो स्वयं वे आए और फिर भगवान श्री राम के रूप में, यही दोनों बहुत ही लोक प्रसिद्ध है और बहुत प्रिय है, प्राय सभी लोग जानते हैं। कई कई टीका में श्रीपाद चौधरी स्वामी जी जब अवतार की बात करते हैं तो कहते हैं जैसे राम कृष्णा अवतार ही, ऐसे बोलते हैं जैसे राम कृष्ण अवतार, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत प्रिय अवतार भगवान का। ऐसी दोनों की लीलाओं में पार्थक्य है, लीला भेद है, दोनों दो नहीं है, व्यक्ति एक ही है, दो रूप में अपने को मैनिफेस्ट करके और भगवान लीला करते। एक में उन्होंने भगवान की लीलाएं की है और दूसरे में एक परफेक्ट मनुष्य की काक्षण प्रस्तुत किया मर्यादा में रखकर। इस दृष्टि से देखा जाए तो भगवान श्री राम की लीलाएं अत्यधिक लोकप्रिय है, क्योंकि भगवान मर्यादा में रहे। देवताओं ने प्रार्थना किया भगवान से अवतार लेने के लिए और महाराज दशरथ भी तरसते थे पुत्र के लिए, भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए, तो भगवान ने अपने को चार रूप में व्यक्त किए, राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये बहुत प्रसिद्ध बात, श्रृंगी ऋषि जिनको कहते हैं उनको बुलाए और श्रृंगी ऋषि ने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में चरु पकाया गया वेद मंत्रों से, वैदिक मंत्र से चरु पकाया गया तो उसमें बहुत शक्ति आ गई और उससे चरु को बांटा गया रानियों को खाने के लिए, तीन रानियां थी महाराज दशरथ जी को, चरु का आधा भाग कौशल्या को दे दिया गया और आधा में फिर आधा किया गया वो कैकई को दिया गया और जो बचा था उसके दो टुकड़े किए गए दो भाग में। लेकिन कौशल्या जी ने कहा कि ये दोनों सुमित्रा को दे दो। इस प्रकार उसे पायस के खाने से माताएं गर्भवती हुई। पर ध्यान रखना चाहिए कि भगवान का शरीर माता पिता के रज वीर्य का परिणाम नहीं होता। भगवान का नक्ष सिक्त शरीर दिव्य है, चिन्मय, परंतु फिर भी बाहर से भगवान बहाना बनाकर गर्भ में प्रवेश करते हैं। तो हम यहां से प्रारंभ करेंगे भगवान की जन्म की लीला को। जादिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान जब भी इस संसार में आते हैं तो उनके आगमन मात्र से सर्वत्र सुख छा जाता है। केवल असुरों को छोड़ करके बाकी सब लोग शांत हो जाते हैं। हम भगवान के आने पर राक्षस असुर दुष्ट जीव घबराने लगते हैं, अपने आप उनको घबराहट होने लगती है, पता नहीं कौन की पत्ती आने वाली है, ऐसा लिखा गया है भागवत में। जब भगवान बारह देव का अवतार हुआ, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दीपी के स्तनों से खून चूने लगा, जबकि सर्वत्र मंगल हो रहा था संसार में। भगवान हिरण्याक्ष का वध करेंगे, इस कारण से उसकी मां के स्तनों से रक्त बहने लगा। तो जो दुष्ट होते हैं, भगवान के विरोधी होते हैं, वेद शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, भगवान के आने पर उनको बड़ा दुख होता है अपने आप, और साधुओं का, देवताओं का, सज्जनों का मन प्रसन्न हो जाता है, अपने आप प्रसन्नता आ जाती है। तो जिस दिन भगवान गर्भ में आए उसी दिन से सारे लोकों में सुख शांति छा गई। जातिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सर्वत्र सुख शांति छा गई, यह भगवान के गर्भ में आने का प्रभाव। क्योंकि भगवान आनंदमय है, आनंद घन है, इसीलिए इस प्राकृत जगत में भले गर्भ में रहें चाहे कहीं रहें, उसका उनके आनंद का विकिरण होने लगा। चारों तरफ सुख शांति छा गई पूरे ब्रह्मांड में, सब देवता और अन्य जीव प्रसन्न हो गए। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खान। और महाराज दशरथ के राजभवन में रानियां बहुत सुंदर लगती थी। जिस नारी के, जिस स्त्री के गर्भ में साक्षात भगवान है, उसकी शोभा का क्या काम है। इस जगत में देखा जाता है कि जो स्त्री गर्भवती होती है तो उसका शरीर भारी हो जाता है और वह प्रसन्न नहीं देखी जाती है, परंतु भगवान जब गर्भ में आते हैं तो प्रसन्नता बढ़ जाती है। इसका उदाहरण श्रीमद् भागवतम में है, कंस देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया था और एक पुत्र अदृश्य हो गया था, भगवान जी को पता नहीं लगा, तो देवकी बहुत दुखी रहती थी, बहुत दुखी। लेकिन जब देवकी के गर्भ में भगवान आए तो उसका सारा दुख नष्ट हो गया, उसके चेहरे पर सुख की मुस्कान रहती थी हमेशा। कंस को पता लगा तो गिन ही रहा था कितने कितने गर्भ हुए, तो 8वें गर्भ के समय वो जेल में निरीक्षण करने गया देवकी का, कैसी है क्या है। उस गर्भ को उसे मारना था तो जाकर देखा कि सुचिस्मिता, देवकी के मुख पर सुख की हंसी मुस्कान, जिसके 6 पुत्र मारे गए थे और एक पुत्र अदृश्य हो गया था, बेचारी गर्भवती थी, पति के साथ कारागृह में रह रही थी, फिर भी देवकी आनंद में थी। तो देवकी के आनंद को देखकर कंस निश्चय कर लिया, निश्चित ही हरि इसके गर्भ में प्रवेश किया है, क्योंकि वो जहां रहता है वहां सब लोग सुखी रहते हैं। जब सब लोग सुखी रहते हैं ये जानते हो तो तुम उनके भक्त क्यों नहीं बजाते हो? इसको दुख हो रहा था, घबरा रहा था। वो कहता है कि निश्चित ही इसके गर्भ में भगवान प्रवेश किया है, विष्णु प्रवेश किया, इसी से इतना प्रसन्न नहीं है। असुर होते हुए भी कंस को यह इस बात का पता था कि भगवान आनंद घन है। कंस जैसे असुर भी कम से कम इतना ज्ञान रखते थे कि भगवान निराकार नहीं है। आजकल के असुरों से वो बहुत अच्छा था, एकदम मानता था कि भगवान है और गर्भ में आ चुका है, ये भी मानता था। तो देवकी की प्रसन्नता को देख करके वो समझ गए। तो भगवान जब आए माता कौशल्या के गर्भ में और भी अपने अंशों से अन्य माताओं के गर्भ में, तो सारे लोगों में सुख संपत्ति छा गई। अपने यहां बिना कोई व्यवस्था के, बिना उद्यम के बहुत सुख छा गई। और रानियां राजमहलों में बहुत सुंदर लग रही थी। तो सुखजित कछुक काल चली गय, जयहर प्रकट अवसर भय। इस तरह से बहुत सुख से दिन जा रहा था। गर्भ में भगवान आए थे, सुख के साथ दिन बीत रहा था। अब वह समय आ गया जिस दिन भगवान प्रकट हुए, आज का दिन। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरयरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। जो भी ग्रह नक्षत्र लग्न तिथि वार थे सब अनुकूल हो गए। किसी व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों की क्या स्थिति है, कौन दिन है, कौन मुहूर्त है, इन सब का बड़ा महत्व है। इसलिए लोग जन्म कुंडली बनवाते हैं। जन्म के समय ग्रहों की स्थिति का बहुत महत्व है। तो भगवान के जब प्रकट होने का समय आया तो सारे ग्रह अपने आप अनुकूल हो गए, अपने को धन्य करने के लिए भी अनुकूल हो रहे थे, न कि भगवान का मंगल करने के लिए। भगवान का तो अमंगल हो ही नहीं सकता, वो कभी जब भी प्रकट होंगे वही सबसे भारी मंगल वेला होती। लेकिन ग्रह योग लग्न ग्रह बार तिथि सभी अपने आप अनुकूल होने लगे कि हम धन्य हो जाएंगे, हम धन्य हो जाएंगे। सकल भय अनुकूल और चर और अचर हर्ष जुत। चर और अचर, चर का अर्थ है पशु पक्षी मनुष्य कीड़े और देवता, तथा अचर का अर्थ है वृक्ष पर्वत नदियां, ये सब सुखी हो, सभी जीव सुखी हो। चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल, क्योंकि राम का जन्म हो रहा है। जो राम है सुख के मूल है, अथवा श्री राम का जन्म ही सुख का मूल। इस जगत में भगवान का बार बार आना, अवतार लेना, यह सुख का आधार है। तो ऐसे सुख निधान आनंद कंद भगवान इस प्राकृत जगत में प्रकट हो रहे हैं, तो क्यों नहीं सब जगह शांति छा जाएगी। बहुत ग्रहों की स्थिति बिल्कुल ठीक थी, एक दूसरे का कोई अतिक्रमण नहीं कर रहा था। और जो योग्य लग्न ग्रह बार तिथि सब कुछ ठीक हो गए। प्रकृति की बहुत सुंदर दशा होती है, आपने देखा है संसार में जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो सजाया जाता है, गेट बनाया जाता है, बंधनवार बनाया जाता है और गलियां साफ की जाती है, सड़क साफ किए जाते हैं। एक बार मैं देखा था, इंदिरा गांधी जी का प्रोग्राम था एक शहर में, तो वहां पर ये अनाउंस हुआ कि जितने भिखमंगे रोड पर हैं उनको थोड़े देर के लिए छिपा देना चाहिए। बनारस की घटना है। तो दशा समेत घाट पर तो बहुत से भिखमंगों की लाइन लगी रहती। मैं उस दिन गया अकस्मात तो देखा कि ये कभी भिखमंगा नहीं है। मैं पूछा कि क्या बात है, तो बताया गया कि प्रधानमंत्री जाने वाले हैं इसलिए उनके दृष्टि में लोग न रहे, सब घटा। हटा करके एक आध घंटे के बाद फिर हाजिर कर दिया, छोड़ दिया गया, वही अमंगल दृश्य हो गया। तो बताइए, जब एक नेता के आने पर ऐसी व्यवस्था की जाती है, सब ठीक रहना चाहिए, गान बजान होना चाहिए, पुलिस के लोग खड़े रहें, सलामी दें, तो भगवान आते होंगे तो कितनी प्रकृति सजती होगी, सारे ग्रह सज गए, प्रकृति सज गई, पृथ्वी सुखी हो गई, सुख शांति छा गई। ये भगवान का अपना प्रभाव है, यहाँ तो व्यवस्था करने पर तब सफाई होगी, बहुत परिश्रम करने पर, उसके लिए डिपार्ट होता है, लेकिन भगवान के केवल आने मात्र से सारी व्यवस्था हो जाती है, ये उनका अपना प्रभाव। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। कौन दिन था, कौन तिथि थी? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, और महीना था मधु, चैत्र को मधुमास कहते हैं, चैत्र को मधुमास कहते हैं और वैशाख को माधव कहते हैं, मधु माधव। भागवत में लिखा गया है कि बलराम जी दो महीने ब्रज में रहे, मधु और माधव महीने, जो मधुमास कहते हैं। क्यों मधुमास कहते हैं चैत्र को? क्योंकि वर्ष में सबसे अधिक मधु का प्रोडक्शन इसी महीने में होता है, ये बसंत का पहला महीना माना जाता है। तो कुछ लोग बसंत का प्रादुर्भाव बहुत पहले से मानने लगते हैं, फागुन को भी बसंत में मानते हैं, परंतु ऋतुओं की गणना के अनुसार लगते हैं, वृक्ष लताएं और उनमें मधु स्रावित होता है तथा तो मधुमक्खियां भ्रमर आदि मधु लगाते हैं नए नए फूलों को पाकर, इसलिए इसको मधुमास कहते हैं। चैत्र वैशाख यह बसंत ऋतु, और जेठ और आषाढ़ इसको कहते हैं ग्रीष्म ऋतु, तथा सावन और भादो श्रावित वर्षा ऋतु, कुवार और कार्तिक को कहते हैं शरद ऋतु, अगहन और पुष को हेमंत ऋतु कहते हैं, तथा माघ और फागुन को शिशिर ऋतु कहा जाता है। ये छह ऋतु होती है, हमारे देश में दो दो महीने पर ऋतु बदलती है। अब तो इतना जनवरी फरवरी भर गया कि इसके आगे लोग इसको जानते ही नहीं है, अपनी गणना भूल है। एक देखा एक भक्त को कुछ गिनने हुआ तो लगा करने 1 2 3 4, मैं कहा हिंदी जाते हो क्या, 1 2 3 कर रहे हैं, 1 2 3 नहीं गिन सकते, तब वो गिनने लगा, हाँ ठीक है 1 2 3 है। कितने सुंदर नाम, मधुमास, मधु का मंथ, मधु का महीना। नौवीं तिथि थी, नौवीं तिथि मधुमास पुनीत पवित्र मधुमास चैत्र शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष चल रहा था, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि थी, और मुहूर्त कौन है भगवान के जर समय? अभिजित मुहूर्त। अभिजित मुहूर्त का ऐसे शाब्दिक होता है अभि जयति जय ददाति अभिजित, सब प्रकार से विजय दे सलता किसी को उसको अभिजित कर, तो अभिजित मुहूर्त चल रहा था हरिप्रीता, जो भला बहुत प्रिय है। भगवान जब भी यहां प्रकट होते हैं तो अभिजित मुहूर्त प्रकट होते हैं। कई अवतारों के विषय में श्रीमद् भागवतम में लिखा गया, बंस कृष्ण भी प्रचलित अभिजित मुहूर्त में और रोहिणी नक्षत्र में। भगवान श्रीराम प्रकट हुए तो दिन था भाव बार बुधवार, ध्यान नहीं क्या ना मंगलवार भावबार में लिखा गया, तो नौवीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, और आगे वर्णन किया जा रहा है क्या समय था भगवान के आविर्भाव का।
मध्य दिवस अति शीतन घाम पावन काल लोक विश्राम।
मध्य दिवस का बिल्कुल कंप्लीट वर्णन क्या कर रहा है, चैत्र का महीना, नवमी तिथि, अभिजित मुहूर्त और शुक्ल पक्ष तथा शुक्ल पक्ष के नवमी मध्य दिन था। भगवान श्री कृष्ण ठीक आधी रात को मध्यरात्रि में जन्म लिए और भगवान श्री राम ठीक मध्य दिन में मध्य दिवस अति शीतन घाम, न उस समय ठंडा हो जाता है और न अभी बहुत ज्यादा घाम होता है। और भगवान जब प्रकट हो रहे थे तो उस समय तो सारा ब्रह्मांड ऐसी हो गया, शीत और घाम नहीं, मशीन नहीं लाना पड़ा था, अपने आप सब कुछ सम से सुनवाई। शीतल मंद सुरभि बाऊ हर शीत सुर संतन मान चाऊ, शीतल मंद और सुगंधित वायु चल रहा अपने आप। कवि जी के मन में शंका होती है कि आखिर सुर से होगा बनाने वाला, तब न वहां से शीतल सुगंधित और मंद हा चल रही। प्रकृति के नियामक भगवान, तो उनके स्वागत में प्रकृति सज कर तैयार हो गई, शीतल मंद सुगंध समय चलने लगा और देवताओं का मन हर्षित हो गया और संतों का भगवान के भक्तों के मन बहुत उल्लास आ गया। भगवान के आगमन से भगवान के भक्तों का मन उल्लास में छा जाता और उससे ठीक विपरीत होता, शीतल मन सुरभि बहवाल हर्षित सुर संधान मन चाल, कुसुमित बन गिरिगन मनियारा श्रवही सल सरिता अमृत धारा। और सारे वन सारे वृक्ष खिले, वृक्ष से भर गए, जिनमें पहले से फूल नहीं था उन वृक्षों में लताओं में भी भगवान के जन्म के साथ फूल भर गया, सुगंधित फूल सब रहे। सुमित वन, वन का अर्थ वृक्ष भी हो रहे और वन का अर्थ जंगल, सब जगह फूल ही फूल ही फूल हो गए। ये तो भगवत वर्णन दिया जा रहा है, इससे समझ ले रहे दसम स्कंद वर्णन है, दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय सुन, वो सा वातावरण हो गया। कुसुमित वन, कुसुमित का पुष्पित कुसुम आ गए सब वृक्षों में लता में, कुसुमित वन गिरन मणिया और जितने भी पर्वत थे उन पर मणिया अपने आप बाहर आकर चमकने लगी। मणि प्राप्त करने के लिए सोना खुदाई कर पड़ती है, लेकिन भगवान जन्म के समय पर्वतों में बाहर मणिया आया करके चमकने लगी चारों, तब जगत धन ही धन दिखाई दे गिरिगम मनियारा सही सकल सकारित धारा। और सारी नदियों में जल ऐसा हो गया जैसे लगता था कि अमृत बढ़ा है, दूसरा प्रदूषण बिल्कुल नहीं हो गया, दूसरा तो प्रदूषण था ही नहीं पहले से, नदियों का जो बिल्कुल स्वच्छ हो गया, नदियां भर गई और अमृत जैसा जल हो गया, इसका अर्थ बहुत स्वच्छ और मधुर जल हो गया। इस प्रकार संक्षेप में प्रति की अवस्था का वर्णन करके अब देवताओं के द्वारा भगवान के आगमन के स्वागत का वर्णन करते हैं। सो अवसर बिरंची जब जाना चले सकल सुर साजी विमाना। ब्रह्मा जी को ये पता चला कि भगवान अब जन्म लेने वाले हैं, प्रकट होने वाले हैं गर्भ से। कैसे जाने ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी और देवताओं को ये टेलीफोन की और मोबाइल की जरूरत नहीं है, वो सर्वज्ञ जान जाते हैं सब कुछ। ब्रह्मा जी सर्वज्ञ शिरोमणि है, आनंद के उद्रेक होते हैं कि वे समझ जाते हैं किसी कारण से आनंद आ रहा है। तो ब्रह्मा जी सबसे बड़े भक्त हैं, वे समझ गए कि भगवान अब प्रकट होना चाहते हैं, तो वे तुरंत समस्त देवताओं को सूचना दी, चलो 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 चलो, और अपने अपने बगीचों से गार्डन से सबसे श्रेष्ठ कोटि के फूलों को ले ली, कई विमान केवल फूलों से भर दिए गए, साजी विमान, विमान साज साज करके चले। विमान सजाने का अर्थ था विमानों पर फूल लेना, अलंकार लेना, स्वर्गीय और आभूषण लेना, सब धन भर करके पुष्प भर करके और लोग चले अयोध्या की तरफ, चले सकल सुर साज विमान, सकल सुर सारे देवता चले। देवता लोग वास्तव में रामनवमी मनाते हैं, आदमी क्या मनाए। आज तो रामनवमी पर्व है और अपने अपने घर में ऑफिस में सब पड़े, संसार में देख ही रहे बहुत कम लोग देवता के रूप में मना रहे हैं। इन देवताओं के विषय में कहा गया है चले सकल सुरसा जीवन, सारे देवता चले, सारी देवियां चली, अप्सराएं गंधर्व जो गान कला में बहुत ही कुशल है, वे सब अपनी अपनी कला द्वारा भगवान को रिझाने के लिए भगवान के जन्मोत्सव में चले। जिसके पास जो भी कला हो भगवान के जन्म के समय वो अपनी कला को प्रदर्शित करना चाहिए। जो कोई व्यक्ति नाचना जानता है तो नाचना चाहिए, गाना जानता है तो गाना चाहिए, आलस छोड़। और भगवान ने यदि धन दिया है तो धन खूब निवछावर करना चाहिए। भगवान देता धन लेकर, फूल लेकर, वस्त्र लेकर, अलंकार लेकर आए, भर भर करके विमान चले। कि देवताओं के लोक में सोचना नहीं पड़ता है कि ये धन कहाँ से लेना है, और फूल लेना है तो खरीदो जाकर के दादर में, और यहाँ खरीदो वहां खरीदो, खरीदना नहीं पड़ता कुछ। फूल भरा हुआ है और कोई वहां दुकान नहीं करनी पड़ती है, फैक्ट्री नहीं चलाना पड़ता है, खेती नहीं करनी पड़ती, सब कुछ स्वाभाविकपन होता है। तो देवता लोग चले सजा करते, गगन विमल संकुल से जो था गांव ही गुण गंधर्व था। तो अयोध्या ऊपर सारा आकाश विमान से खचखच भर गया। यदि अयोध्या तो इसको नहीं देख रहे थे, लेकिन कथा आने वाले भगवान शिव इसको देख रहे, क्योंकि वे भी गए ही थे। उनका जो नंदीश्वर बैल है वह भी बहुत बड़ा विमान है, उस पर पूरा संसार अट सकता है। ऐसा नहीं समझना कि भगवान शिव एक बूढ़ा बैल करके घूमते रहते हैं। केवल आकार बैल है लेकिन वो दिव्य विमान है। वास्तव तो का कह रहे हैं कि सारे होता भर गए, मैं भी था उसमें। गगन विमल आकाश निर्मल था, विमानों भर गया था, तो विमान से इतना भर गया था कि ऊपर कुछ भी दूसरा चीज दिखाई नहीं दे रहा। बादल छाया विमानों से दिन के समय, और देवता फूल बढ़ा रहे थे। और सबसे ऊंचा स्वर किसका था? गंधर्वों का, जो स्वर्ग लोक में बहुत ही सुंदर गा रहे, वे सब गा रहे थे भगवान की कीर्ति। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। गंधर्व गा रहे थे और अप्सराएं नाच रही थी। स्वर्ग लोक की देवियां भगवान के महोत्सव में, भगवान के अभिषेक के समय अति विशेष पर्व पर वे नाचती। ऐसा नहीं जहां तहां उनको कोई हायर करके ले जाना चाहते, वो भगवान के ही उत्सव में गाते नाचती। और गंधर्व तो बहुत सुंदर गा रहे। इस संसार में कोई गायक ताजा गाने लगता है तो कहते नहीं, तो गंधर्व जैसा गा रहे। मनुष्य गंधर्व जैसा गा ही नहीं सकता, ईश्वर के द्वारा यह शरीर होता है कंठ स्वर और गान कल, उसकी केवल कल्पना करते हैं कि गंधर्व जैसा कहा है। सुने हैं क्या गंधर्व का गीत? भाई कोई सुनोगा तब न मिलान करके देखेगा कि हाँ भाई ठीक है, ऐसा टैली कर रहा है। वैसा नहीं गा सकते कोई, यहां भी पर संभव नहीं। न वैसा ठूर होता है यहाँ, न वैसा कंठ स्वर न गीत, और न वैसा सुंदर शरीर, वो सब कुछ विलक्षण है। स्वर्ग में भगवान के सब के लिए वे सजर्व रहते। स्वर्ग में भी रोज रोज जुलूस उत्सव निकलता है, भगवान केंद्र वहीं रहते हैं मंदिर। और देवताओं के यहाँ भी भगवान के जन्मोत्सव घर घर में मनाए जाते हैं। अभी रामनवमी मना रहे होंगे देव इंद्र और ब्रह्मा सब अपने अपने भवन में, अपने अपने स्थान में, और नृत्य गीत चल रहा होगा। हम मनुष्यों को इसका पता, जैसे यहाँ की मच्छर मक्खियों को ये पता नहीं होगा कि दिन में जन्मोत्सव मनाया रहा है ना, बाहर उनको क्या पता होगा कि क्या जन्मोत्सव मनाया। ऐसे ही मनुष्य को कुछ भी पता नहीं कि स्वर्ग में भगवान राम का दिव्य जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सर्वत बलि महाराज सुतल लोक में मना रहे होंगे, प्रहलाद नज मना रहे हैं, नारद जी किसी उत्सव के अध्यक्ष बने हों। इस प्रकार जिस भगवान प्रकट हुए तो सब देवता आए, ऋषि मुनि आए और आया करके गंधर्व गाने लगे। बस ही सुमन सुमंजलि साजी, कह कह गगन दुल भी बाजी। देवता आए और अंजलि साजी, विमान से अंजलि में भर करके फूल बरसाने लगे। परस ही सुमन अंजलि साजी, सुअंजलि सारी का खूब आता से ले लेकर और धारावाहिक फूलों की वर्षा अयोध्या करने लगी। अयोध्या के लोग फूल देखे, गांव को नहीं देख रहे, फूल से भर गई अयोध्या चारों तरफ। तो जब सारा संसार इतना स्वच्छ है, इतना सुंदर होता, तो अयोध्या कितनी सुंदर लग रही होगी, जो भगवान अपनी जन्मभूमि है, जहां वे प्रकट रहे, जहां बाल करेंगे और जहां वे रह सके राज्य करे। ये तो कल्पना से बाहर बात, कितनी सुंदर लग रही होगी अयोध्या, एक एक गली और घर और वहां के वासी सजे धजे फूलों की वर्षा कर रहे। स्तुति कर रही नाग मुनि देवा, और नाग देवता और मुनि ये लोग वेद मंत्रों से या तत्काल बनाई गई स्तुतियों से भगवान का गुण गा रहे, स्तुति कर रहे। बहुविधि लावहिनी जी सेवा, और सब अपनी अपनी सेवाएं भगवान को समर्पित कर रहे थे, दे रहे थे अपनी ढंग की भी सेवा कर सके, कोई धन से, कोई गीत से, कोई नृत्य से, कई प्रकार से भगवान को संतुष्ट करना चाहते थे। तो इस पर देवता लोग वृत्ति करके, भगवान से प्रार्थना करके, गर्भ स्तुति करके और अपने अपने घर चले, भगवान की इच्छा को समझ कर। ठीक धर्म स्कंध में जैसे वर्णन है, भगवान के जन्म के पहले देवता आए और स्तुति कर चले गए भगवान, इसके बाद धर्म प्रकट हुए। तो यहां भी वही क्रम, विनती करके देवता लोग अपने अपने धाम गए, तो जग निवास प्रकटे अखिल लोक विश्राम, इसके बाद भगवान प्रकट हुए। जग निवास बहुत प्रकट है, यद्यपि भगवान जगत के कणकण में है, लेकिन वे अयोध्या में माँ कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए। कुछ काल के लिए माँ कौशल्या एक दिव्य बेहोशी में हुई, ये साधारण सांसारिक बेहोशी नहीं जाननी चाहिए उसको। तो भगवान उसके गर्भ से प्रकट हुए, बहुत ही प्रसिद्ध है गीत है, इसे प्रायः आज के दिन सभी मंदिरों में गाया जाता होगा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज जारी भूषण वनमाला, नयन विशाला निज आय सोभाषी दुखरारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, दीनों पर दया करने वाले, इस संसार के दुखदग्ध जीवों पर प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दया, भगवान सहज कृपामय, अपना वैकुंठ छोड़ करके यहाँ आने की उनकी क्या आवश्यकता है, लेकिन जीवों पर दया करके प्रकट हुए। दुखियों पर भगवान दया करते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या, कौशल्या जी का क्या हित था, भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए बहुत दुखी रहती थी पहले, तो कौशल्या का स्तन पीने के लिए, कौशल्या के गोद में खिलकारियां करने के लिए, कौशल्या के लाड़ प्यार को स्वीकार करने के लिए, उसको सुख देने के लिए भगवान प्रकट, कौशल्या हितकार, कौशल्या का यही हित है भगवान उसके गोद में आवे। हर सित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। माँ कौशल्या ने देखा तमद भूतम बालकम बुझेक्षणम, ठीक दशम स्कंद में भगवान कृष्ण के आविर्भाव के अनुसार वर्णन किया गया। अद्भुतम बालकम, अद्भुत बालक। पहला अद्भुतम तो यह था कि यह बच्चा चार भुजा से युक्त था, यह अलौकिकता है। प्राय संसार जन्म लेते हैं बच्चे तो दो भुजा के, चार भुजा तो यहां किसी को होती नहीं। अगर हो जाए कभी तो ऑपरेशन करके उसको हटाना ही पड़ेगा। एक भुजा हो सकती है, एक टांग भले हो जाएगी, लेकिन ज्यादा लोग नहीं होती। कोई जन्म लेता है तो जन्म के समय ही बच्चे को परम सुंदर अद्भुत बालक देख रही है। हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप निहारी या विचार, वो अद्भुत रूप है जो मुनियों के मन को भी हर लेने वाला है। जिन मुनियों का मन संसार के किसी भी बच्चे में, किसी स्त्री में, किसी में नहीं जा सकता है, स्वर्गीय अप्सराओं में भी जिनका मन नहीं जा सकता है, गंधर्वों के रूप में भी नहीं जा सकता, ऐसे मुनियों के भी मन को आकर्षित करने वाला उस बच्चे का रूप था। इसका अर्थ है सब कुछ दिव्य, तब तो मुनियों का मन उस बच्चे में जा सकता था। मुनिमन हाल, सब कुछ अद्भुत था। अद्भुत यह था कि जन्म लिया वो बच्चा प्रकट हुआ तो उसके पूरे काले काले केस उसके सिर पर उगे थे। संसार में जब बच्चा जन्म लेता है तो एक भी बाल कपाल पर नहीं रहता है, धीरे धीरे केस बढ़ते हैं, तब आदमी जुल्फी संवारना चालू करता है, वो बात पहले नहीं, और मरने से पहले भी केस सब समाप्त हो जाते। ये दशा है मनुष्यों की, फिर भी अपने को कैसे कुछ लोग भगवान कह देते हैं, आश्चर्य। भगवान प्रकट हुए तो केस सब थे, उनके अंगुलियों में अंगूठी थी, पैरों में नूपुर था। आगे इसका वर्णन करना। निजे आयुध भुजचार लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। शरीर कैसा था भगवान का? घन श्यामा, बादल के समान श्याम। और गर्भ का कोई भी जल या रक्त भगवान के शरीर पर कुछ भी नहीं। इस संसार में तो जो बच्चा जन्म लेता है तो उसको तो पता ही नहीं रहता है कहाँ जन्म लिया है, बंबई में लिया कि अहमदाबाद में लिया, कहाँ क्या पता है। बाद में सिखाया जाता है ये बताओ यहाँ घर है, यहाँ पोस्ट है, ये जिला है, ये सब सिखाया जाता है। हमने देखा जब मेला लगता है तो बच्चे के पॉकेट में एड्रेस लिख करके डाल देते हैं, और कहीं खो जाए तो लोग उसको देख करके पहुंचाएंगे, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल पशु जैसा होता है, उसको पता नहीं होता है कुछ। बल्कि पशु भी चलाक होते हैं, कुत्ता को कहीं छोड़ दीजिए घूम कर आ जाएगा घर, है ना। लेकिन मनुष्य का बच्चा यदि खोया तो खो ही जाएगा, कोई बुद्धि नहीं होती। आगे चल करके स्कूल में नाम लिखाया जाता है, कॉलेज में पढ़ता है, तब कहने लगता है हम भगवान हो गए। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन तो भगवान नहीं थे ना, और मरने से पहले ही भगवत का समाप्त हो जाएगी। भगवान इसको कहते हैं जिनके स्मृति में कोई खंडन नहीं है, जिनका श्री विग्रह अनादिकाल से एक रस है। भगवान के केस है, सब कुछ है। निज आयुध भुज चारी, और भगवान की चार भुजाओं में अपने आयुध थे, शंख चक्र गदा या धनुष बाण जो कुछ भी कहा। गर्भ से प्रकट हुए और शंख चक्र गदा लिए हुए प्रकट हुए, चमचम शीशा की तरह भगवान का शरीर चमक रहा था, सांवला, कानों में कुंडल झूल रहा था, भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरा। भूषण वनमाला, भगवान जब प्रकट हुए तो सारे गहने लगाए थे, सारे आभूषण लगाए थे, और यहां तक कि वनमाला थी, फ्रेश पुष्पों की माला थी, कहीं कोई माला पिछला हुआ नहीं, मुरझाई हुई मुरझाया हुआ एक भी पुष्प नहीं, वो कहां से आ गया। हम लोग जन्म लिए होंगे तो बिल्कुल नंग धड़ंग जैसे हमने बच्चे जन्म ले, बाद में नाप नाप करके पैंट शैंट सिलाया जाता है, चाहे जो भी किया जाए। शुरू में तो अभी पैंट नहीं पहनाया जाता है, बहुत गंदा कपड़ा रख दिया जाता है उसी पर पेशाब सर्च करने की। मैं भगवान के जन्मोत्सव के समय पर ये बात कह रहा हूँ थोड़ा और क्लियर करने के लिए कि हमारी क्या स्थिति है, तो यहाँ अपनी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। परंतु मनुष्यों का ऐसा स्वभाव है कि बिना प्राकृत जगत का वर्णन किए हुए अप्राकृत को समझ नहीं पाते। तो भगवान की विलक्षणता, भगवान के स्वभाव समझना चाहिए। तो ये है अवतार, इसको अवतार कहते हैं। भगवान आते हैं अपने आयुध के साथ, निज आयुध, निज आयुध का अपना आयुध। भगवान का प्रसिद्ध आयुध है शंख चक्र गदा गदा, पद्म तो आयुध नहीं है, वह तो एक श्रृंगार है, आभूषण है, लेकिन शंख चक्र और गदा ये हथियार आयुध भगवान इसको लेकर प्रकट है। भूषण वनमाला नयन विशाला, आभूषण और वनमाला लगाए हुए। क्या कोई बच्चा ऐसा संसार में जन्म लेता है? अब तो प्राय सभी बच्चे अस्पताल में जन्म ले रहे हैं, है ना? और धीरे धीरे घर पर तो जन्म लेना छूट नहीं जा रहा है, अस्पताल में जन्म, और अस्पताल से जन्म लेते ही सुई इंजेक्शन दिया जाता है, इस दंड दिया जाता है बच्चे, उस कोमल शरीर में सुई चुभाई जाती है, दवा चढ़ाया जाती है, नहीं तो कोई रोग हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा। बहुत बड़ी सजा है इस संसार में मनुष्य, लेकिन इतना अज्ञानी जीव है तुरंत भूल जाता है। गर्भ में सजा भोग करके आया तब तक सुई खोसाने लगा, जहरीली दवा पिला दी, और बच्चा प्रतिकार नहीं कर सकता, मच्छर काटते हैं, खटमल काटते हैं, कह भी नहीं सकता कि हमको यह दर्द हो रहा है, केवल रो रो करके अपने दुख को प्रकाशित करता है। कुछ भी हुआ बस रो नहीं, ये कहीं आवाज, ये कहीं सीटी बस है, भूख लगी है तो रोए, कोई काट दिया दुख हो रहा है तो रोना रोना। बाद में भाषा का ज्ञान होता है, बाद में हम कहते हमारे पीठ में कोई काट दिया, हमको भूख लगी है, बाद में अपनी संवेदना को हम प्रकाशित करते हैं भाषा के माध्यम से, लेकिन शुरू में तो कुछ भी ज्ञान नहीं। भगवान सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व सौंदर्य संपन्न, समस्त आयुध से संपन्न रहते। कोई व्यक्ति यह कह देता है कि अरे राम क्या है, दशरथ के लड़के, ठीक है वो दशरथ जी के पुत्र बने गए, लेकिन कैसे पुत्र है जरा ये भी तो विचार करो, वो भी तो विचार करो। ये मूर्ख लोग ये नहीं सोचते थे इन सब बातों में, भगवान में जितना दोष हो सके उसको तो कहते हैं, भगवान के गुणों को याद नहीं करते, भगवान में कोई दोष नहीं है, मिथ्या कल्पना करके कहते हैं, अपने मन के दोषों का आरोप भगवान पर करते हैं। भगवान ने गीता में कहा है जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो देखिए भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को। नयन विशाला, भगवान जब प्रकट हुए तो उनके नयन खिले हुए थे और भगवान की आंखें बड़ी बड़ी हैं। यहाँ इस संसार में जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म पनमान माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरा, भगवान शोभा के समुद्र है, अक्षय आकर अनंत सौंदर्य निकल रहा है। तो भगवान को इस रूप में कौशल्या माता देखती, कह दुई कर जोरी आस्तुति तोरी, केही विधि कर अनंता माया गुण ज्ञान पीत जमाना, वेद पुराण भनंता। दोनों हाथ जोड़ करके मां अपने बच्चे से प्रार्थना करती है, क्या कभी संसार में ऐसा हुआ है? आज ही बच्चा अभी दो मिनट पहले प्रकट हुआ और उसके पैर पर गिर रही है, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करो अनंत। हे अनंत, मैं आपकी क्या स्तुति करूं? भगवान उसमें प्रकट हुए तो थोड़े बड़े रूप में प्रकट हुए, बच्चा ही थे लेकिन बिल्कुल शिशु नहीं, तो मैं कैसे आपकी स्तुति करूं? मेरे पास कोई शक्ति नहीं है आपके गुणों को कहने की। वास्तव में आप माया के गुणों से परे हैं। माया के तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो आप सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे हैं, मतलब गुणातीत, दिव्य है, चिन्मय। माया गुण ज्ञानातीत माना, माया के गुणों से आप अतीत, इंद्रियों के अनुभव से आप अतीत, और आप अपरिच्छिन्न है, अमान है, आपको मापा नहीं जा सकता, आप किसी देश में काल में बाधित नहीं। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता है। वेद पुराण भनंता, वेद और पुराण ऐसा कहते हैं, वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि आपका सब कुछ है, अनंत है, चिन्मय है, दिव्य है। इससे सिद्ध हुआ कि कौशल्या जी बहुत ही वेद पुराण सुनी थी, ये पढ़ी थी उन्होंने। तब तो पारे कि वेद पुराण कहते हैं कि आप चिन्मय हैं, दिव्य हैं, तो इससे प्रेरणा मिलती है कि प्रत्येक स्त्री को चाहिए कि वो वेद शास्त्र पढ़े। आजकल वेद शास्त्र पढ़ने का मतलब है वेद का फल भागवत पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, ये वेद का ही निष्कर्ष है। वेद शब्द आ जाए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ओरिजिनल वेद पढ़ेंगे, एक शब्द समझ में नहीं आएगा। लेकिन वेद की व्याख्या जो पुराणों में की गई है और श्रीमद् भागवतों में सारांश दिया गया है, तो ये कहा जाए कि वेद शास्त्र पढ़ना चाहिए, तो उसका अर्थ भागवत और भगवत गीता पढ़ना चाहिए, उसका यही अर्थ होता है। माता कौशल्या भगवान के रूप गुण लीला आदि को खूब सुनी, ऋषियों के यहां में भी शरण में भी पूर्व जन्म में सुने थे, इस जन्म में भी सुनते रहते थे। पहले के लोगों का यह सबसे बड़ा कर्तव्य और सबसे दीर्घ काल तक चलने वाला काम होता था भगवान की बातें सुनना, आयोजन नहीं करना पड़ता था उनको, 10 दिन का या 1 महीने का, 2 दिन का आयोजन नहीं, वो तो रोज ही आयोजन ही आयोजन उनका रहता था, सुनते रहते थे, स्त्रियां भी सुनती थी। सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रकट भयो श्री कंत, करुणा सुख सागर सब गुण आगर। जही का वही श्रुति समता, जो करुणा के सागर हैं, सौंदर्य के सागर हैं, अर्थात जिनमें अनंत करुणा है, अनंत सौंदर्य है, वे प्रभु मेरे हित के लिए प्रकट हुए। वास्तव में तो आप लक्ष्मीकांत हैं, आप श्रीकांत हैं, लक्ष्मी जी के भी पत्नी है, आपका कोई जन्म नहीं है, आपकी कौन माँ हो सकती है, आपका कौन पिता हो सकता है, लेकिन आप मुझे अपनी माँ के रूप में स्वीकार करके और मेरे घर से प्रकट हुए। लेकिन एक बात के लिए माँ कौशल्या भगवान से कह रही है कि इसको दूसरे लोग नहीं मानेंगे कि आप मेरे गर्भ से प्रकट हुए, और मैं तो देखी हूं कि इतना दिन गर्भ में रहे आज प्रकट हुए, ऐसे नहीं लोग मानेंगे। तो इसी विकल्प का, इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए माँ कौशल्या कहती है, ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदक है, सो मम उर्वासी यह उपहारी, सुनत धीर मति थिर नल है। माया के द्वारा रचे हुए अनंत कोटि ब्रह्मांड आपके एक रोम कूप में रहते हैं, और जो शरीर है उसमें रोए जमे हुए हैं, तो वहां आप देखेंगे वो छोटा सा गड्ढा जैसा होता है, उसको रोम कूप कहते हैं, रोम कूप है, बहुत होता है। तो भगवान के एक रोम कूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड अट गए हैं, रहते हैं। तो जिसके एक रोम रूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड अटा हुआ है, वो भगवान किसी स्त्री के घर कैसे अटेगा? ये संभव कैसे करता है? विचार कीजिए, परंतु कौशल तो प्रत्यक्ष देखी है, गर्भ में रहे प्रकट हुए। ब्रह्मांड निका निर्मित माया रोम रोम विभेद का है, अनंत अनंत ब्रह्मांड आपके एक एक रोम रूप में रहते हैं। सोमौर वासी ऐसे प्रभु मेरे उदर में रहे, यह उपहास यदि मैं कहूं भी लोक में भगवान हमारे हृदय हमारे उदर में आए हैं, तो भी लोग हंसते हैं, यारे बोलिए क्या बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं, ऐसा क्यों आ रही है? माँ कौशल्य भगवान से ही बात कर रही, भीड़ मत तो यहाँ पर जिली बुद्धि थक गया, जो तो अनुभवी है तक पढ़े हैं, ये लोग भी इस बात को नहीं मानेंगे। ब्रह्मांड में इतने कितने लोग हैं, स्थान है आप देख रहे हैं, केवल बम्बई किसी के शरीर में आ जाए तो क्या वो व्यक्ति की माता के उदर रखता है? फिर कैसे आ रहे? लेकिन भगवान विचित्र लीला गीता में भगवान कह रहे हैं ये सारा जगत मेरे भीतर है, और फिर कहते हैं भीतर कुछ भी नहीं, यह कोई विचित्र बात नहीं है। जैसे मान लीजिए हम यहां बैठे हैं तो हम इस मंदिर भीतर बैठे हैं, परंतु हम मन देख रहे हैं पूरे मुंबई को या हिमालय पर्वत को देख रहे हैं, समुद्र बहुत दूर तक देख रहे हैं, तो हमारे मन में आता है ना, हमारे मन में जितना भी हम सोच रहे हैं वो उठा हुआ है, समाया हुआ है, और मन शरीर भीतर है। मन में हमारा संसार है, मन शरीर के भीतर देख रहे हो, शरीर बाहर भी है, शरीर के भीतर भी। जब मन इस तरह हो सकता है, मन उसमें समाया हुआ है, मन से सब गया है, तो मन से भी सुप्रिय बुद्धि है, बुद्धि से प्रिय आत्मा है, आत्मा से सुप्रिय परमात्मा है, तो परमात्मा में क्यों नहीं हो सकता है? साथ नहीं भी है, दोनों बात फैक्ट, इसमें कोई संदेह नहीं। एक ही श्लोक में भगवान इस बात को कहते मत स्थानी सर्वभूतानि चतुस्थानि भूतानि, भगवान कहते हैं तो अचकित हो गए। विपरीत बात बोल रहे, एक बार कहते हैं सब कुछ में भीतर है, और एक बार कहते हैं कुछ भी मतलब नहीं। भगवान कहते हैं पश्चिम में जोग महेश्वरम, ग्रंथि लगाओ बुद्धि, विचार करो मैं कौन, मेरे ऐश्वर योग को देखो, देखने में तो जरा विचार कर कौन। इस प्रकार से जिस प्रभु के एक एक रोम कूप में अनंत अनंत ब्रह्मांड समा सकता है, वे प्रभु माता कौशल्या के उदर में समाये, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे, यह उपहास ही है। यदि मैं ऐसा कहूंगी कि भगवान हमारे पुत्र हमारे गर्भ में आए तो लोग हम पर हंसेंगे, क्या ये सपना देख लो, पागल हो गए, ऐसा हो ही नहीं सका, लेकिन ये सब हुआ है। क्या जो पद है स्पष्ट लगता है कि श्रीमद् भागवतम के श्लोक का अनुवाद, माता देवकी ने भगवान से कह दिया प्रकट होने पर कि आप जल्दी से जल्दी इसको छिपा लीजिए, रूप को आप छिपा लीजिए, याद कि आप अपने रूप को अदृश्य कर दीजिए। तो भगवान ने कह दिया कि माँ तुम क्यों मुझे छिपने की कह रही हो? उसने कह दिया कि इस बात का पता न है कि आप मेरे गर्भ से जन्म लिए, नहीं तो कंस को मारेगा, उसको नहीं लगना चाहिए कि आप गर्भ से जन्म लिए, जैसे पहले आप अदृश्य थे वैसा फिर अदृश्य हो जाएगी, चले जाइए। तो भगवान ने कहा कि माँ मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया हूँ, इसी कारण तुम मां कही जाओगी, तुम्हारी बहुत प्रसाद संसार में होगी, आत्मसलाह तुम्हारी सलाह होगी, बढ़ाई होगी, मुझे इसी पर रहने दो। तो मां देवकी कहती है मुझे ठंड नहीं चाहिए, मुझे बढ़ाई नहीं चाहिए, बल्कि मेरी बहुत भारी हंसी होगी, मैं कहूंगी कि आप हमारे घर से जन्म लिए हैं, तो सब लोग कहेंगे कि दही चुपड़ना चालू की, तुम्हारी प्रसन्नता भी होगी, सब लोग हमको झूठ कहेंगे, हरी बेइज्जती होगी, कोई विश्वास ही नहीं करेगा, गर्भ गोद रहो और निकट से विनम्र तब, लोग तो विश्वास नहीं करेंगे आप हमारे गर्भ में। ऐसे आज विचार चलता है कि भगवान वास्तव में गर्भ आ रहे हैं कि नहीं, कुछ वैष्णव लोग भी कह देते नहीं नहीं वो तो केवल देखने भर के लिए होता है, गर्भ में नहीं है। क्यों? भगवान अब नहीं आ सकते हैं क्या? जब परमात्मा रूप से सबके हृदय में है ही, तो गर्भ रहा कौन उनके लिए मुश्किल काम है? जहां भगवान आ रहे हैं वहां धाम पले बन जाता है भगवान, जैसे सूर्य कहीं जाएगा उसके चारों तरफ आलोक आलोक प्रकाश प्रकाश पहल भर जाता है। नहीं है कि सूर्य जाकर इसी अंधकार की कोठरी में बंद हो जाएगा, उसको गायब कर लेगा, कोई कर सकता है ऐसा कि कोठरी में अंधकार भरा हुआ है और किसी की बुद्धि के मन में यह बात हो कि सूर्य को इस अंधकार के भीतर बंद करो, तो सूर्य के आने के समय ही अनंत दूर तक तो प्रकाश पहले ही आ जाएगा, अंधकार क्या रह सकता। देखने में मां देवकी का हृदय पेट प्राकृत लग रहा है, लेकिन वह भगवान की जननी, कौशल्य भगवान की जननी, इसलिए भगवान का धाम पहले ही उसके उदर में आविर्भूत हो जाता है। भगवान अपने धाम में ही निवास करते, वास्तव में भगवान गर्भ में आते हैं, यह सिद्धांत है। इसीलिए तो बार बार बात कही जाती है, देवकी नंदन, देवकी तनय, कौशल्यानंदन। भगवान यदि भगवान गर्भ में न आवे, मान लीजिए कोई बच्चा गर्भ में न आवे तो स्तन में दूध भी नहीं आ सकता है। भगवान जब गर्भ में आए तब तो माता कौशल्या के स्तनों में दूध भर गया उनके पीने के लिए, ये सब प्रमाण है कि भगवान गर्भ में आते हैं। परंतु भगवान का गर्भ में आना कुछ और है। कौशल्या जी कहते हैं कि लोग हाथी उड़ाएंगे, कैसे संभव है। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत बिलकी न चाहे, सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुख प्रेम। तो जब माँ को यह तत्व ज्ञान हो गया कि ये भगवान है, मान रही है, भगवान मानने लगी, तो उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, जब माता देवकी माता कौशल्या को ज्ञान हुआ तो भगवान हंसने लगे, क्योंकि भगवान तो बाल चरित करना चाहते थे। तो कही कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लाए, तो भगवान कथा कहने लगे माँ के विषय में और पिता के विषय में, आप पूर्व जन्म में ऐसे थे ये थे, और ऐसी बात कहने लगे जिससे कि माँ के हृदय में सुत प्रेम लाए, पुत्र भाव उत्पन्न हो, वात्सल्य भाव हो। तब माता की मति जो तत्वज्ञान की थी, भगवान को भगवान समझ गई, वो डोल गई। माता पुनि बोली सो मति डोली, अब पहली मति डोल गई। माता पुनि बोली सो मति डोली तज तात यह रूपा। माता को संलय कहती है कि बेटा तात शब्द का तो पुत्र है, यह रूप छोड़ दो, तुम द्विभुज हो जाओ। तज तात यह रूपा का अर्थ है कि शंख चक्र हटाओ और चार भुजा मत धारण करो, दो भुजा में हो जाओ, बच्चा बन जाओ जिससे तुमको गोद में खिलाओ, मैं भगवान को कैसे खेलो। कौशल्या जी कह रहे तजह तात यह रूपा की जय शिशु लीला। शिशु लगी तजह तात यह रूपा, तो आप बच्चा बन जाइए, और बच्चा बन जाइए का अर्थ इतना ही नहीं था, कलाकार बदल दीजिए, बच्चा हो जाइए। सुन बच्चन सुजाना बोध उठाना बालक सुर गोपाल। तो भगवान ने पर अपनी माँ की सुनो चतुर्भुज रूप छा लिए, द्विभुज हो गए, और द्विभुज बन करके जैसे जन्म लेने पर बच्चे रोने तेरे रोने, यह भगवान की विचित्रता है। बच्चा से तो छोड़ दीजिए, इससे एकदम सयाना से ज्ञानी आदमी सही की तरह बच्चे जाइए, आप होता है बच्चा। भगवान उसी शरीर से जब चाहे जरे हो सकते हैं, चतुर्भुज के देखते देखते दूसरे। और जो माँ को ज्ञान प्रदेश कर रहे थे, बता रहे थे बच्चा होकर के रोने, तो रोने लगा बच्चा, तो फिर उसको उठाकर दूध पिलाना और जात कर्म जो है जन्म लेने जो क्रियाएं की जाती है वो सब की जाने लगे। तो सुन बच्चे न सुजाना रोदन ठाना, और साधारण रोवाई नहीं रो लगे राम, रोदन ठाना रोने कहा क्या कर बच्चे से रो। यह भगवान की लीला माधुर्य, पांच भाव के अनुसार भगवान कर, वास्तव में धन भक्तों के वश में, मन है बच्चा हो जाएगा कीजिए तो भगवान वही हो गए। सुवचन सुजाना रोदन था बालक स्वरूपा, और यही सुख है उन लोगों को मिलेगा जो इस लीला को गाय सुनते हैं। यह चरित गावही हतद पावही ते पर ही भौकला, इस चरित को जो लोग गाय हैं सुनते हैं वे कभी भी संसार कुएं में नहीं गिरेंगे, संसार समुद्र नहीं गिरेंगे, वह भी वह जाएंगे जहां भगवान राम रहते हैं, और चाहे तो कौशल के भाव से उनकी लीला का आनंद ले सकते। बिबधेन सुर संतहितालीन मंजय अवतार निशा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मण पृथ्वी देवता गौओं के लिए भगवान ने अपना मनुष्य श्री विग्रह प्रकट किया। वास्तव में भगवान का शरीर माया के गुणों से और इंद्र है। इस इच्छा मेरे पर भगवान अपनी इच्छा से अपना स्वरूप प्रकट किए, प्रकृति ने उनका शरीर बनाया। इस प्रकार आज के दिन भगवान अयोध्या में भगवान के प्रकट होने के बाद अयोध्या में गह गह भाया बजने लगा। कैसे पता चला कि बच्चा लिया है? बच्चा ढूंढने लगा तो खबर फैल गई, जन्म ले लिया, जन्म ले लिया। कभी कभी बाहर घर के रहते मान लीजिए प्रसव किया है, माता है तो बाहर पता लगता है तभी जब बच्चा रोता है। इसका अर्थ है कि जन्म के समय रोना है ही बच्चे, कोई रूटीन से नहीं रहा है, दुख रोता है बच्चे। बच्चे जन्म के समय बड़ा दुख होता है इसलिए वो रोता रहता है। ऐसे हुए हैं जो हंसते हुए जन्म लिए, प्राय सब रोते हुए जन्म लिए। कवि ने लिखा है कि कबीर दास ने कहा, जब हम इस संसार में पैदा हुए तो घर के लोग थाली पी रहे थे, खाजा जा रहे थे, खुशी में हंस रहे थे, और जिसका जन्म हुआ है वो रोता, जन्म लिया है वो रो रहा है, और घर के बड़े लोग उसका तो दुख सहते नहीं है, वो लोग खुशी नाचते हैं। तो वैसी करनी कर चलो कि हम भी हंसो, तो ऐसी करनी करनी चाहिए कि हम हंसते भगवान के धाम में जाए और फिर विरह में चलो, ऐसा होना चाहिए। आए तो लोग रोते हैं। ऐसा कहता है कि भगवान तुलसीदास जी अपने माँ गर्भ से जन्म लिए तो वे राम राम सब सुनते हुए जन्म लिए, जिसे उनका नाम था बचपन में राम बोस, यही नाम प्रसिद्ध था राम बोस। बाद में उनका नाम तुलसीदास जी के गुरु ने दिया था, उनका प्रसिद्ध नाम है राम बोला। कई जगह एक घटनाएं सुनने मिलती है लिखी हुई। गोस तुलसीदास जी जब घर छोड़ दिए थे अपनी पत्नी के कहने से वैराग्य हो गया, रत्ना नाम था सुना तो चले गए थे। बहुत काल के बाद रामायण लिखने के बाद एक दिन उनकी इच्छा हुई कि चलो जर अपने जन्मभूमि पर। उनका एक दोहा है, दोहे के बल से इस बात कहा जाता है, तुलसीदास जी का एक दोहा है, कहा न कबहू जाइए जहां जन्म को ठाव, भाव भेद जाने नहीं धर पाछिलो नाम। कोई साधु हो या विरक्त हो गए तो उसको अपने जन्म स्थान पर नहीं आना चाहिए, नहीं तो लोग वही वाला नाम बोले बचपन में रखा गया, और स्वामी गोस्वामी बड़े लगाएंगे जो पहला स्कूल नाम रहता है चाहे वही पूछते हैं का होता हलचल पूछते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास तो गांव प्रवेश अभी नहीं लिए, उनकी पत्नी उस गांव में थी और परिवार के लोग थे, लेकिन गांव से बाहर एक जगह एक बुढ़िया माता जी रहती थी, वो चावल चना आदि भूजा करती थी बाहर गांव। तो जाड़ा का महीना था, तुलसीदास जी गए, अब तो साधु देश में बिल्कुल वैष्णव से तो गए तो रुके, रात में वहां वे पहुंचे तो दाना भूज रहे तो आग तापने लगे जाड़ा, तो माँ जी पहचान गई उनको तुलसीदास को, तो उधर के लोग भाषा में वो कही के बता राम बोला वा तुलसीदास जी तो वहां से भाग गए। अब अयोध्या रे बाप रे राम बोलावा नाम कर रहे तो फिर घर नहीं गए। दूसरी जगह लोग वैष्णव समझते हैं, आदर करते हैं, भक्त के रूप में ख्याति, और वहां जाकर कोई राम बोलवा है और तो गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं रोए थे, वे राम राम बोलते हुए जन्म लिए थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु हरि हरि कहते हुए अवतार लिए थे। कुछ ऐसे लोग हैं विलक्षण, लेकिन हम लोग तो हाय हाय करते रोते हुए जन्म लिए। कदाचित किसी को विश्वास न हो और कहीं उसका कोई टेप रिकॉर्ड किया होगा तो बचपन में कैसे रो रहे थे सब पता चल जाएगा, रिकॉर्डर हो या वीडियो रिकॉर्डिंग हो जो भी हो। भगवान भी रोने लगे इस लीला को जो गाते हैं सुनते हैं, भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं, ये कभी भी संसार बंधन में नहीं पड़े। भगवान का जन्मोत्सव मनाना भगवान का बहुत बड़ा आदर करना है। हम लोग इस मनुष्य शरीर में पता नहीं किसका किसका कितना आदर किए हैं, किसको मान दिए, लेकिन जीवन में सबसे अधिक मान भगवान को देना चाहिए। इस अवसर पर जो राम कथा का आयोजन किया गया यहाँ बहुत अच्छा हुआ है, आप लोगों ने हमको गौरव दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मुझे एक अवसर मिला वर्णन किया। वैसे तो भगवान के गुण अनंत हैं, बहुत ग्रंथ इस पृथ्वी पर हैं, परंतु हम लोगों की बुद्धि बिल्कुल अल्प है। एक तो उसे पढ़ने का भी समय नहीं रहता है, पढ़ने पर बुद्धि भी ग्रहण बहुत कम कर पाती है, सब तो कमी कमी। तो जन्मोत्सव में भगवान के गुणों का वर्णन करना सुनना यह उत्सव का एक अभिन्न अंग। इस हरे कृष्ण मंदिर ने इस काम को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया और यही है प्रतिदान। आप सभी बॉम्बे के भक्त या कांग्रेगेशन जो भी मंदिर को सहायता करते रहते हैं, मंदिर आपको भगवान की कथा दे रहा है, भगवान का जन्मोत्सव दे रहा है, यह बहुत बड़ा दान है, इसमें अवश्य भाग लेना चाहिए। जब भी कोई उत्सव हो तो हृदय खोलकर भाग लेना चाहिए, जैसे रथ यात्रा है, जन्माष्टमी है, गौर पूर्णिमा है, रामनवमी, और वैसे साप्ताहिक फेस्टिवल तो संडे का चलता ही रहता है। ये समझना चाहिए कि हम किसी उत्सव में भाग ले रहे हैं तो हम भगवान का आदर कर रहे हैं। जैसे कोई दूल्हा जा रहा है, वर जा रहा है और बारात में आप हो लिए तो दूल्हा का आदर माना जाएगा, केवल चल दिए तब भी वो खुश रहता है कि हमारे बारात में आए थे। तो जगन्नाथ जी भगवान श्री राम प्रसन्न होंगे कि हमारे जन्मोत्सव में भाग लिया, ये हम लोगों का धर्म है, भगवान का प्रचार करना, भगवान के जन्म दिवस पर जुटना, भगवान के रथ यात्रा में जुटना, इतना भगवान को आकर्षक प्रस्तुत करना चाहिए लोक में कि सब लोग अपना अपना मत छोड़ करके राम के भक्त हो जाए। यह हम भक्तों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी, इस्कान के भक्तों पर, अपनी जिम्मेवारी को हम लोग अधिक से अधिक समझें और भगवान का प्रचार करने में सफल बने, यही भगवान श्री राम के चरण कमलों में हमारी प्रार्थना है। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवान यहाँ रहते हैं तो रावण सीता जी का हरण कर लिया था और भगवान ने सीता जी के विरह में सीता जी का अन्वेषण करते हुए चल रहे, पर्वत की कंदरा में घुसते थे, पूछते थे नाम रखकर नदी के किनारे, और तो और बहुत भारी आश्चर्य होता है कि भगवान पेड़ से पूछ रहे थे, झाड़ से पूछते थे, हिरण से पूछते थे, पत्थर से पूछते थे, नदी से पूछते थे, पूछत चले लता और उपाधि, लता से, पता से, वृक्ष से, कीट पतंग से, जानवर से पूछते जाते हैं, तुमने सीता को देखा है, सीता को देखा, खूब रो रहे थे। इतना पागल तो आज भी कोई नहीं होगा, कितना भी किसी से प्रेम करे और वह चली जाए कहीं तो आदमी से भले पूछेगा कि कहाँ गई, लेकिन जड़ पदार्थ से तो नहीं पूछेगा, टेबल से थोड़े पूछेगा कि तुमने मेरी प्रेयसी को देखा है कहीं देखा है। भगवान की यह अद्भुत एक लीला हुई, जो सर्वज्ञ भगवान है सब कुछ, और उनके प्लान से ही सीता का हरण किया गया। भगवान ने कहा था कि तुम अग्नि में निवास करो और अपना एक नकली रूप यहां छोड़ दो जिसको रावण हरेगा, और मैं बहाना बना करके राक्षसों का नाश करना चाहता हूं, ये कथा है। तो रावण ने असली सीता जी का हरण नहीं किया था, चैतन्य चरितामृत में भी ये कथा है, कूर्म पुराण का उद्धरण चैतन्य महाप्रभु देते हैं। तो भगवान की योजना से सीता का हरण हुआ, लेकिन ऐसा विलाप भगवान ने किया ऐसा कि देख करके सती का दिमाग कुछ और हो गया। भगवान शिव देखे तो प्रणाम करने लगे दूर से, निकट नहीं आए, क्योंकि निकट जाने पर हल्ला हो जाता कि ये भगवान है, शिव जी इनका दर्शन करने आए थे, तो शिव जी दूर से प्रणाम किए। और कहीं सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज नसावन। कामदेव के बैरी भगवान शिव ने कहा जय सच्चिदानंद। भगवान रो रहे थे परंतु शिव जी तो समझ रहे थे कि ये भगवान की लीला है। उनकी पत्नी सती जी देखी इस राजा के लड़के को ये सच्चिदानंद ब्रह्म कहकर के शिव जी प्रणाम करते हुए, क्या हो गया क्या बात, सोचने लगे कि ये जो लड़का है खोज रहा है अपनी पत्नी को, ये निश्चित भगवान नहीं है। यदि भगवान विष्णु का अवतार होता तो विष्णु भगवान भी तो सर्वज्ञ हैं, वे क्यों खोजेंगे। सती जी इस तरह मन में तर्क करने लगी, लेकिन उनका गिरा हुआ चेहरा देखकर भगवान शिव ने पूछा कि सती देखो तुम्हारा स्त्री का स्वभाव है, इस प्रकार की शंका भगवान की लीला पर मत करो। अभी अभी जिनकी कथा सुनने के लिए हम लोग गए थे वही प्रभु अवतार लिए हैं, ये भगवान है, इनको मनुष्य मत समझो। लेकिन सती जी ने वो रोते बिलखते हुए देखा था भगवान को, तो उनके मन पर ऐसा असर हो गया, तो गए नहीं 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 नहीं, यद्यपि कहे सिर बात शिव बार बहु। सती जी के मन में विश्वास ही नहीं हुआ जबकि वक्ता शिव जी थे और उनकी खास अपनी अर्धांगिनी पत्नी उसको समझा रहे थे कि ये भगवान है भगवान है, समझो यही परब्रह्म है परमात्मा है लीला कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं। तो शिव जी ने यहां तक कह दिया कि यदि तुम्हारे मन में अधिक संदेह है तो जाकर तो परीक्षा ले लो कि वो भगवान है कि राजकुमार। तब वो प्रसन्न हो गए कि हाँ, लेकिन उसने कहा कि मैं परीक्षा लेने जाऊंगी और आप कैलाश पहुंच जाएंगे तो क्या मैं अकेले जाऊंगी फिर। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं यहीं पर बैठ करके रहता हूं, ये बरगद का वृक्ष है, तब लग बैठ यहा बट छाही, जब लग तुम आए हूं वही पाही, जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगी यहां मैं बैठकर रहूंगा तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तो चली गई भगवान की परीक्षा लेने के लिए। भगवान जो रो रो करके सीता को खोज रहे थे उस क्षेत्र में पहुंच गए और भगवान शिव समझ गए कि राम का कोई विशेष प्लान है, तभी सती को ज्ञान नहीं हो रहा है, नहीं तो इतनी विदुषी स्त्री को क्यों नहीं ज्ञान हो जाता। मोरे कहे न संशय जाए, मेरे कहने पर भी संशय नहीं जा रहा, लगता है भगवान की कोई विशिष्ट योजना है। तो अस कही लगे जपन हरिनामा, वो बैठ करके अपने नाम पूरा करने लगे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, जो होगा सो देखा जाएगा, देखें क्या पत्नी की दशा होती। तो पति की बात नहीं मानी और लगी तो राम की परीक्षा ले। भगवान गरुड़ जी का घुसुंडी जी कहते हैं वहां पर कि जैसे चींटी समुद्र का थाह लेने चले वैसे सती जी का दिमाग पागल हो गया, राम की परीक्षा लेने चले। तो बार बार विचार करके सती ने परीक्षा का पेपर क्या तैयार किया, अपने को सीता का रूप बनाया, तो परम सुंदरी है ही, और सीता की जैसी साड़ी थी जैसा मेकअप था जैसे थी अपने को तुरंत कर लिया। तो सती जी ने सोचा कि यदि ये राजकुमार होगा मनुष्य होगा तो मुझको सीता समझ करके कहेगा मेरी सीता मिल गई, मैं तो रो करके मर गया, कहाँ छिपी थी कहाँ ये थी ये थी। सती जी ने ये सोचा तो सती जी सीता बन गई थी और चली उस पथ से जिधर से भगवान राम रोते हुए लक्ष्मण जी के साथ आ रहे। भगवान तो भगवान है, उन्होंने देखा और देखते ही समझ गए कि सती जी ने दूसरा मेकअप कर लिया है तो भगवान से भूल नहीं हो सकती। तो भगवान गए और चरण छूकर प्रणाम किए। अब तो प्रणाम करते ही सती का तो होश हवास उड़ गया है, भगवान मनुष्य लीला कर रहे कि अभी नहीं कहते हैं कि हम भगवान हैं, परंतु ये कैसे जान गए कि ये सती है सीता नहीं है। प्रणाम किए और प्रणाम करके प्रश्न कर दिए, पूछे बहुरी कहाँ दृष्टि हेतु, विपिन अकेली फिर कही हेतु। भगवान ने पूछ दिया कि वो वृक्ष केतु जी कहाँ है, मतलब आपके हस्बैंड जी कहाँ है आपके पति जी कहाँ है, क्या बात है कि अकेले वन में घूम रही है। यह एक व्यंग था भगवान का, पत्नी को अकेले नहीं घूमना चाहिए और वह भी वन में। तो बिपिन अकेले फिर के ही है, तो इस जंगल में घोर वन में अकेले कैसे घूम रही है। जैसे लगा कि भगवान का सारा सुख दूर हो गया, वो सीता का पता भूल गए, रो नहीं रहे। तो एक तो प्रणाम किए, दूसरे कुछ दिया, अकेले क्यों घूम रही है। वे कहा है सती जी, अब थोड़े बताने वाले थे कि वो वहां राम नाम जप रहे हैं। मौन शोक करने लगे, मैं शंकर कर कहा न माना, निजे अज्ञान राम पर। अब तो ज्ञान हो गया कि ये भगवान है, लेकिन अब क्या करे। डरते डरते वो गई श्री जी के पास। तो बीच में भगवान ने दिखाया उनको, भगवान ने दिखाया, सती ने देखा कि सीता का हरण हुआ नहीं है, राम सीता और लक्ष्मण जा रहे हैं। फिर बाद में सती ने देखा कि ब्रह्मा शिव दुर्गा आदि सभी राम की सेवा कर रहे हैं, राम पर ब्रह्म है, ईश्वर है, ये सब दिख रही है सती। बहुत बहुत बात देखी तो अंत में आंख मूंद करके रास्ते में बैठ गए। इसके बाद देखी कि राम सीता को खोजते हुए जा रहे हैं। तो गई शिव जी के पास, बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं क्या पूछेंगे क्या कहेंगे। तो जाते शिव जी पूछे हंसकर, उन्होंने पूछा कि परीक्षा कवन विधि सत्य कहूं सब बात। हंसकर उन्होंने कहा कि सती परीक्षा क्या तरीका था, तुमने किस तरह परीक्षा लिया भगवान की। तो कहती है झूठ बोलती है स्त्री, झूठ भगवान की माया ने झूठ बुला दिया, देवियां कभी झूठ नहीं बोलती। भगवान कहते कहो सत्य सब बात, सब बात कहो और सत्य कहो, कोई छिपाना मत और एक भी बनाना। तो ये कहती है कुछ न परीक्षा लीन गोसाई किन प्रणाम करी ना, मैं कोई परीक्षा नहीं ली, आप जैसे प्रणाम किए थे वैसे मैं भी जाकर के पढ़ा, यही परिणाम है। ठीक झूठ उल्टा बोल रहे, प्रणाम तो राम की है, मुझे कोई परीक्षा नहीं ली और जाकर के मैं भी प्रणाम की, रास्ते में मन बदल गया था और तुम जो कसम मिला न हुई, आप जो कहते हैं झूठी बात नहीं है, वास्तव में वो भला है। सतंक देखे उधरी ध्यान सती जो की चरित जान, भगवान शिव वो तो त्रिया चरित समझते थे, लेकिन ऐसी परीक्षा जाकर प्रणाम करेगी, उसे इतना तर्क कर दी और जाकर प्रणाम करेगी, हमारे उपदेश के कारण नहीं हुआ तो रास्ता ज्ञान दिया क्या क्या। भगवान से ध्यान करने लगे, ध्यान में देखे ओ, तो सीता का रेश बनाई थी और ऐसा ऐसा नाटक करके आई, अभी भगवान की मां प्रणाम किए कि वो सती को झूठ बोलवा दी, जब कम जीवन में नहीं बोल। इस प्रकार से भगवान को ये लीला है, नहीं लोग समझ पाएंगे। आज तक ये कहते हैं दो बात लोग क्या करते हैं, दशरथ पुत्र हुए भगवान कैसे हैं और अपनी पत्नी इस तरह खुते थे की तरह, तो भगवान ऐसा बड़े करेगा क्या, भगवान प्रबंध नहीं हो सकता है भाई, रोना ही है भगवान तो उसको कौन रोकता है, और जन्म लेना चाहे तो कौन रोक देगा उस जन्म लेने से। भगवान भगवान है, हम भक्तों को भगवान की ये लीला को समझना चाहिए, इसके बहुत बड़ा हास्य था। भगवान बहुत रोए, वाल्मीकि रामायण 10 अध्याय भगवान के बीच का वर्णन किया गया, बहुत रो रहे। एक बार तो रोते क्रोध आया भगवान को, दिव्य रोते हैं लक्ष्मण, ये मेरी पत्नी नहीं मिली, मैं अपने पत्नी के साथ नहीं रहूंगा, तो किसी को भी उस पत्नी के साथ नहीं रहूंगा, मैं सारे संसार को मार दूंगा, नहीं तो ये देवता सभी खोजे सीता को, अगर हमारी पत्नी को नहीं खोज पाए तो अपनी जगह से नहीं रह पाए। और बाण ऐसे तान देते हैं, लक्ष्मी हाथ पकड़ते हैं बाण धनुष को, ये व्यक्ति ने गलती किया और सारे देवताओं को क्यों मार चाहते हैं, और लोगों ने कसूर किया, क्या हो गया, क्यों मारना चाहते हैं, तब भगवान सब हो जाती है। फिर रो बस अध्याय कंटिन्यूस विलाप कर, सीता मैं समझ की वन में तुम्हें ये दशा थी, तो मैं अपने पिता की बात की अवज्ञा कर लिया होता, मैं नहीं लाया था, मैं जग महाराज क्या उठूंगा, कहीं कहीं हृदय दुगना जाएगा जब सुने कि तुम्हारा हरण हो गया है, तुम मर गए, ये क्या हो। ऐसे भगवान बोले, जिस समय जग महाराज के कानों में एक बार जाए उनकी क्या दशा होगी, पता नहीं तुम किस दशा में हो, कौन राक्ष ले गया, कौन तुम खा जाएगा, ये रहेगा। बहुत बहुत लाभ का वर्णन, बड़ा साहित्यिक उत्कृष्ट वर्णन है, ईमान की लीला हुई जय श्री नारायण। हरे कृष्ण जय श्री राम।
श्री सुखदेव स्वामी हनुमान जी के मुखारविंद से भगवान श्री राम की गौरव की गाथा गाये हैं। भगवान श्री राम के कुछ में गाए गए हैं। तीन पुरुष वर्ष हैं। श्री हनुमान जी हमारे वैष्णवों के गुरु हैं, सबके नेता हैं, तो वे सबको भक्ति उपदेश करते हैं। भगवान की महिमा गए श्री भागवतम को मुख्य आधार है। भगवान श्री राम कुछ गुण स्मरण लिया जाएगा। श्री सुख मैं पढ़ रहा हूँ गव्य कि पुरुषे वर्ष भगवंतम आज पुरुषम लक्ष्मणाग्रजम सीताभिरामम रामम तचरण सन्निवर्षाभिरतः परम भगवतो हनुमान सहति पुरुषे अभिरत भक्ति ही उपासते। वासना में क्या मुख्य रूप से कहते हैं, ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय न आज लक्षण शीव्रताय नम उप शिक्षितात्म उपास लोकाय नम साधुवाद निकषणाय नमो ब्रह्मांड देवाय महापुरुषाय महाराजाय नम इति। इसके बाद कुछ श्लोक बोले श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं किम पुरुष वर्ष में भगवंतम आदिपुरुषम आदिपुरुष भगवान की आराधना करते हैं। परम भागवत हनुमान भगवान के परम भक्त श्री हनुमान जी सह किम पुरुष किम पुरुष वर्ष में जितने भी लोग हैं उनके साथ भगवान की भक्ति करते हैं। श्रीमद् भागवतम के इस सेक्शन में हम लोग ये देखते हैं कि इस पृथ्वी को छोड़कर जितने भी दूसरे वर्ष हैं दूसरे लोक हैं वहां सर्वत्र भगवान की भक्ति है। भक्ति से शून्य केवल यही प्लैनेट है। सह किम पुरुष ही किम पुरुष वर्ष के लोगों के साथ परम भागवत हनुमान उपासक है आदि पुरुष है भगवान की उपासना करते हैं। उनका और विशेष परिचय देते हैं आदि पुरुष का लक्ष्मणाग्रजम लक्ष्मण से अग्रज जो लक्ष्मण जी से पहले जन्म लिए अग्रज आगे जन्म लिए पहले जन्म लिए लक्ष्मण जी के बड़े भाई सीता भी राम और जो सीता के लिए बहुत ही अभिरमणीय है अथवा सीताया अभिराम सीता के साथ होने से बहुत सुंदर लगते हैं। ये आप कहें ऐसा अकेले भगवान इतना अच्छा नहीं लगते हैं, अपनी प्रिया जी के साथ जब रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। भगवान श्री कृष्ण भी प्रिया जी श्री राधा रानी के साथ होकर के ही बहुत अच्छा लगते हैं। कुछ लोगों का ये बहुत ही दुराग्रह रहता है कि राधा रानी को क्यों बगल में बैठा दिया जाए, क्या जरूरत है, रुक्मिणी को क्यों नहीं किया जाए। कई बात तर्क करते ये क्या आप लोग कर रहे हैं, भगवान की विवाहिता पत्नी रुक्मणी है उसको नहीं रखते हैं और राधा को लाकर खड़ा कर दिए, क्या आप लोग शिक्षा दे रहे हैं। ना समझ लोग राधा रानी के तत्व को नहीं समझते हैं इसलिए इस प्रकार का प्रश्न करते हैं। सीताया अभिरामम सीता विरामम भगवान श्री राम सीता जी के साथ बहुत अच्छा लगते हैं, यह सुखदेव गोस्वामी का वाक्य। इसके द्वारा सिद्ध हुआ कि भगवान की उपासना उनकी प्रिया के साथ उनकी शक्तियों के साथ होती आई है अनादिकाल से। राधा रानी या किसी भी स्त्री को भगवान के साथ नहीं रखना चाहिए, वो भगवान को अकेले देखना चाहते हैं ब्रह्मचारी के रूप में। हम शुष्क हृदय हैं, वो भगवान को समझते ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण तो सर्वदा किसी न किसी के साथ रहते हैं, गाय के साथ रहते हैं, मयूर के साथ रहते हैं, चाहे बानर के साथ, खाओं के साथ, प्रिया जी के साथ, किसी गोपी के साथ या माँ यशोदा के गोद में। और अकेले तो भगवान विभूत जैसा क्या करेगा, बताइए। किसी भवन में भगवान को कहा जाए आप अकेले रहिए तो भगवान उब कर हट जाएंगे उस रूम से, हम अकेले क्या करेंगे। तो एको अकामयत बहुत्या, सृष्टि का प्रारंभ है जो हुआ उस समय कहते हैं भगवान अकेले थे तो अपने को असंतम इव आत्मानम अमन्यत, अपने को नहीं जैसा अनुभव कर रहे थे। यह उपनिषद का वाक्य है, असंतम इव, भगवान को ऐसा लग जैसे मैं हूं ही नहीं। तब उन्होंने यह विश्व रचा। प्रश्न होगा कि इसके पहले भी तो भगवान वैकुंठ में रहते हैं और उनके कर रहते हैं, हाँ, लेकिन वे भगवान जब अपने को एक्सपेंड किए कारण समुद्र में तो उन्होंने ये अनुभव किया कि हाय मैं अकेले पड़ गया, अपना घर भी छूट गया और इधर संसार रचा भी नहीं, दी में फंस गया। वैकुंठ में तो उधर रहते हैं अपने परिकरों के साथ, परमानंद की लीला करते हैं, परंतु कारण समुद्र में वे ऐसा अनुभव कर रहे थे और गर्भ समुद्र में मैं अकेला हूं, तब वे सृष्टि किए। इसके बाद भगवान बड़े प्रसन्न रहे। हमारे यहाँ एक कहावत कहते हैं कि गृहस्थ के लिए जाल अच्छा, कंगाल अच्छा है, जंजाल अच्छा है गृहस्थ के लिए, कंगाल अच्छा नहीं। और साधु के लिए कहते हैं कंगाल अच्छा, जंजाल अच्छा नहीं। साधु यदि गरीब है, अकेले विरक्त है तो ठीक है, कंगाल जितना उतना है, और गृहस्थ है कंगाल नहीं चाहिए, उसको जंजाल चाहिए, उसी में उसकी शोभा। तो भगवान है अपनी शक्ति, इस प्राकृत में भगवान अपनी